नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज सर्वदलीय बैठक में बांग्लादेश की स्थिति के बारे में जानकारी दी। डॉ जयशंकर संसद में भी बयान देंगे। ब्रिटेन की सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में बांग्लादेश में अशांति की जांच कराने की मांग की। मौजूदा स्थिति के कारण प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देकर देश छोड़ना पड़ा है। भारत का पहला बहुराष्ट्रीय वायुरक्षा अभ्यास तरंग शक्ति 2024 आज से तमिलनाडु के सुलूर में शुरू हो रहा है। बल्गारिया में राजनीतिक दलों के सरकार बनाने में विफल रहने के कारण शीघ्र ही चुनाव की नई संभावना। और पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा तथा किशोर जैना चुनौती रखेंगे, वहीं पहलवान विनेश फोगाट और भारतीय हॉकी टीम के मुकाबले भी होंगे। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज संसद के दोनों सदनों में बांग्लादेश की स्थिति पर बयान देंगे। डॉ जयशंकर राज्यसभा में दिन के 2:30 बजे और लोकसभा में 3:30 बजे वक्तव्य देंगे। इससे पहले सरकार ने आज सुबह बांग्लादेश की स्थिति पर विचार विमर्श के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने नेताओं को बांग्लादेश के ताजा घटनाक्रम की जानकारी दी। डॉ जयशंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में सर्वदलीय बैठक में मिली सर्वसम्मति और समर्थन की सराहना की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू तथा केंद्रीय मंत्री और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक में शामिल थे। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, तृणमूल कांग्रेस के सुदीप बंदोपाध्याय, एनसीपी शरद पवार गुट के सुप्रिया सुले, राष्ट्रीय जनता दल की मीसा भारती, समाजवादी पार्टी के प्रोफेसर राम गोपाल यादव, डीएमके पार्टी के टीआर बालू और विपक्ष के अन्य नेता भी बैठक में उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री और जनता दल यूनाइटेड के लल्लन सिंह, केंद्रीय मंत्री तथा जनता दल सेक्युलर के एचडी कुमारस्वामी, केंद्रीय मंत्री और तेलुगुदेशम पार्टी के राम मोहन नायडू और लोक जनशक्ति पार्टी आर के अरुण भारती भी बैठक में शामिल हुए। ब्रिटेन सरकार ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे के लिए जिम्मेदार अराजक स्थिति की संयुक्त राष्ट्र से जांच कराए जाने की मांग की है। शेख हसीना को कल सेना के विमान से देश छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा था। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लेमी ने कहा कि उनका देश बांग्लादेश में शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक स्थिति चाहता है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 सप्ताह से बांग्लादेश में अप्रत्याशित हिंसा में अनेक लोगों की जान गई है और इस तरह की घटनाओं की स्वतंत्र जांच जरूरी है। ढाका में प्रधानमंत्री के सरकारी आवास गणभवन में हजारों प्रदर्शनकारियों की तोड़फोड़ के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस बीच बांग्लादेश में जारी छात्र आंदोलन ने अंतरिम सरकार के गठन की रूपरेखा तय कर दी है। आंदोलन के समन्वयकों ने नोबेल पुरस्कार विजेता डॉ मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का मुख्य सलाहकार बनाने का प्रस्ताव किया है। आंदोलन के एक प्रमुख समन्वयक नाहिद इस्लाम ने सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश के जरिए ये घोषणा की। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे के बाद अंतरिम सरकार बनाने का फैसला किया है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
बांग्लादेश में 6 बजे से कर्फ्यू हटा लिया गया। हालांकि आज दोपहर तक सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर लोगों की आवाजाही बहुत कम थी। इस बीच आवामी लीग के नेताओं और समर्थकों के घरों और संपत्तियों में तोड़फोड़ की कुछ घटनाओं के बारे में अपडेट आ रहे हैं। इससे पहले बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने घोषणा की थी कि राष्ट्रीय संसद को भंग कर यथाशीघ्र अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। राष्ट्रपति ने कहा कि यह निर्णय विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं, नागरिक समाज के प्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों के साथ बैठक में लिया गया। बैठक में तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद रहे। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि अंतरिम सरकार निर्वाचित सरकार को सत्ता हस्तांतरित करने के लिए जल्द आम चुनाव कराएगी। बैठक में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की अध्यक्ष खालिदा जिया और अन्य राजनीतिक कैदियों को रिहा करने का भी फैसला किया गया। नवल संघ परमार, आकाशवाणी समाचार, ढाका।
बांग्लादेश में पिछले 2 सप्ताह से जारी विरोध प्रदर्शनों में अनेक लोग मारे गए हैं और बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए हैं। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी ने आज पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में भारत बांग्लादेश सीमा का दौरा किया। उनके इस दौरे का उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में बीएसएफ की संचालनगत और रणनीतिक तैयारी की समीक्षा करना है। बांग्लादेश की स्थिति को देखते हुए बीएसएफ ने सुरक्षा बढ़ाने के लिए भारत बांग्लादेश सीमा पर अलर्ट जारी किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। राज्यसभा में आज नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा फिर शुरू हुई। चर्चा में भाग लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के अमरपाल मौर्य ने कहा कि सरकार ने करोड़ों परिवारों को एलईडी बल्ब उपलब्ध कराए हैं, जिससे 45 अरब यूनिट ऊर्जा की बचत हुई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की डॉ फौजिया खान ने कहा कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए बजट प्रावधानों में सौर ऊर्जा पर विशेष ध्यान दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कृषि भूमि में सौर परियोजनाओं को बढ़ावा देने की पीएम कुसुम योजना अपने लक्ष्य पूरे नहीं कर सकी है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संतोष कुमार ने आरोप लगाया कि सरकार की घोषणाओं में विरोधाभास है। सरकार ने कहा है कि साइबर अपराधों पर नकेल कसने के लिए देश भर में 1,92,00,000 सिम कार्ड ब्लॉक कर दिए गए हैं। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि सरकार की साइबर धोखाधड़ी के खिलाफ कतई बर्दाश्त न करने की नीति है।
धोखाधड़ी को रियल टाइम में रोकने के लिए एनपीसीआई के साथ जोड़ा गया। जुलाई 2024 से 7.6 लाख से अधिक शिकायतों में 2400 करोड़ रुपए से अधिक राशि की बचत की गई। टोल फ्री नंबर 1930 को अप्रैल 2020 में आरंभ किया गया। इस प्रकार से सरकार तमाम ऐसे प्रचार प्रसार कर रही है। दूर संचार विभाग से ने जून 2024 में 1.92 करोड़ मोबाइल कनेक्शन को भी डिस्कनेक्ट किया और 2.9 लाख मोबाइलों को हेडसेट से भी ब्लॉक किया। लगातार सरकार इस पर ध्यान दे रही है।
सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत देश भर में 22 नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स को मंजूरी दी गई है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि 19 एम्स ने काम करना शुरू कर दिया है। सरकार ने आज कहा कि देश में पिछले 10 साल में वामपंथी उग्रवाद में बहुत कमी देखी गई है। लोकसभा में प्रश्नकाल का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों की संख्या अब घटकर 38 रह गई है, जबकि 2013 में ये संख्या 126 थी।
2004 से 14 तक की उसमें 1824 जवानों ने अपनी जान गंवाई थी। मोदी के एनडीए सरकार के इस 10 वर्षों में 509 अपने जवानों ने भी जान गंवाई है और इस प्रकार से जब देखेंगे तो 72% की कमी हुई है। नागरिकों की जान गंवाने में कमी आई है। जो वामपंथी उग्रवादियों द्वारा उनकी हत्या की जाती है 69% की इसमें कमी आई।
केंद्र ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 11 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसानों को अब तक 3,24,000 करोड़ रुपए वितरित कर दिए हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने ये बात कही। फिजी की राजधानी सुवा में भारत वंशियों और भारत मित्रों ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सम्मान में स्वागत समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि फिजी में उन्हें घर जैसा महसूस हो रहा है। उन्होंने भारतीय मूल के लोगों द्वारा अपनी संस्कृति और पारंपरिक मूल्य अक्षुण्ण बन रखे जाने की सराहना की।
आधुनिक फिजी के निर्माण में गिरमिटों और उनके वंशजों द्वारा किए गए योगदान को मान्यता देने के लिए मैं फिजी सरकार को भी धन्यवाद देती हूँ। गिरमिट दिवस को नेशनल हॉलीडे के रूप में घोषित किए हैं और उस दिवस को हिंदी का सरकारी भाषा के रूप में इसको घोषित किए हैं, इसीलिए सरकार को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ।
राष्ट्रपति फिजी की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं और उन्हें फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति मुर्मू कल से 9 अगस्त तक न्यूजीलैंड के दौरे पर रहेंगे। राष्ट्रपति की विदेश यात्रा का अंतिम पड़ाव तिमोर लेस्ते है और वे वहां 10 अगस्त को पहुंचेंगी। बल्गारिया में वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार सरकार बनाने का तीसरा और आखिरी प्रयास भी विफल हो गया है। इसके बाद नए चुनाव कराने का विकल्प बचा है। ऐसे में बल्गारिया में पिछले 3 वर्ष में यह 7वां चुनाव होगा। राष्ट्रपति रूमेन राडेव ने हाल में सबसे छोटे संसदीय ग्रुप से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार मनोनीत करने और सरकार बनाने की कोशिश करने को कहा था, लेकिन पार्टी पर्याप्त समर्थन जुटाने में नाकाम रही। इससे पहले जुलाई में दो बड़े संसदीय ग्रुप भी स्थायी गठबंधन सरकार बनाने में विफल रहे थे। बल्गारिया के संविधान के अनुसार अब राष्ट्रपति को कार्यवाहक सरकार नियुक्त करनी होगी और नए संसदीय चुनाव की प्रक्रिया तय करनी होगी। सूडान में मूसलाधार बारिश और बाढ़ के कारण कम से कम 32 लोगों की मृत्यु हो गई और 107 अन्य घायल हो गए। सूडान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 7 राज्य बारिश और बाढ़ की चपेट में हैं और 5,500 से अधिक घर टूट गए हैं। श्रीलंका की नौसेना ने तमिलनाडु के थूथुकुडी के 22 मछुआरों को आज गिरफ्तार कर लिया। उनकी दो नौकाएं भी जब्त कर ली गईं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 आज से कोयम्बटूर के सुलूर एयरबेस पर शुरू हो रहा है। ये 14 अगस्त तक जारी रहेगा। युद्धाभ्यास कार्यक्रम दोपहर बाद 3 बजे शुरू होने की संभावना है। इस आयोजन में अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात और सिंगापुर सहित दुनिया के 30 देश अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों के साथ भाग ले रहे हैं। और अब पेरिस ओलंपिक की खबरों के साथ हैं अमन यादव।
पेरिस ओलंपिक में आज भारतीय खिलाड़ी हॉकी, एथलेटिक्स, टेबल टेनिस और कुश्ती प्रतिस्पर्धाओं में चुनौती पेश करेंगे। भारत की पुरुष हॉकी टीम का सामना आज सेमीफाइनल में विश्व चैंपियन जर्मनी से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे शुरू होगा। नीरज चोपड़ा और किशोर जेना आज जेवलिन थ्रो के क्वालिफिकेशन राउंड से अपना अभियान शुरू करेंगे। कुश्ती में एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता विनेश फोगाट महिलाओं की 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल स्पर्धा में होंगी। टेबल टेनिस की टीम स्पर्धा में भारत के शरद कमल, हरमीत देसाई और मानव ठक्कर चीन के शीर्ष खिलाड़ियों का मुकाबला करेंगे। महिलाओं की 400 मीटर दौड़ में भारत की किरण पहल रीप चेस राउंड में ट्रैक पर होंगी।
देश के कुछ हिस्सों में हिंसक विरोध प्रदर्शन और झड़पों के बाद ब्रिटेन में भारतीय उच्चायोग ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। उच्चायोग ने भारतीय आगंतुकों को स्थानीय समाचारों और स्थानीय अधिकारियों द्वारा जारी सुरक्षा सलाह का पालन करने की सलाह दी है। भारतीय नागरिकों को उन क्षेत्रों से दूर रहने को कहा गया है जहां विरोध प्रदर्शन हो रहा है। उत्तराखंड में आपदा प्रभावित केदार घाटी में राहत और बचाव कार्य आज छठे दिन भी जारी है और ये अंतिम चरण में है। अब तक 11,700 से ज्यादा श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज सर्वदलीय बैठक में बांग्लादेश की स्थिति के बारे में जानकारी दी। डॉ जयशंकर संसद में भी बयान देंगे। ब्रिटेन की सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में बांग्लादेश में अशांति की जांच कराने की मांग की। मौजूदा स्थिति के कारण प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देकर देश छोड़ना पड़ा है। भारत का पहला बहुराष्ट्रीय वायु रक्षा अभ्यास तरंग शक्ति 2024 आज से तमिलनाडु के सुलूर में शुरू हो रहा है। बल्गारिया में राजनीतिक दलों की सरकार बनाने में विफल रहने के कारण शीघ्र ही चुनाव की संभावना। और पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा और किशोर जैना चुनौती रखेंगे, वहीं पहलवान विनेश फोगाट और भारतीय हॉकी टीम के मुकाबले भी होंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।